तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उस विषय को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, समर्पण एक अग्नि पथ। समर्पण एक अग्नि। बहुत बहुत समय पहले भारत में एक बहुत बड़े विद्वान कवि हुए थे जिनका नाम था विद्यावाचस्पति। 11वीं शताब्दी उनके जीवन में उल्लेख है कि यह व्यक्ति अत्यंत वैराग्य था। उसे किसी चीज में रस नहीं था संसार की। उसकी खोज थी भगवान को पाने की। वो अपनी ही वैराग्य अवस्था में निरंतर रहता था। परंतु पिता ने एक दिन कहा, तुम्हें शादी करनी होगी। परंतु उसकी अवस्था इतनी ऊंची थी कि पिता क्या कह रहे हैं उसे पता नहीं। उसने कहा ठीक है, हाँ बोल दी, उसकी शादी होगी। परंतु उसका मन कहीं और लगा था, क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। घर में पत्नी आ गई। पर उसे यह भी खबर नहीं कि मेरी शादी हो गई है और घर में कोई स्त्री भी है। वो अपने लिखान में, अपने अध्ययन में, अपनी साधना में डूबा हुआ। परंतु वो स्त्री भी ऐसी अद्भुत थी कि उसने कभी ये जताने की कोशिश नहीं की कि मैं भी हूं। इतिहास साक्षी है कि 12 साल तक वो पत्नी उनके साथ रही और उनको 12 साल तक ये पता ही नहीं कि कोई मेरे साथ भी रहता है। और उन्होंने यह निर संकल्प किया था कि जैसे ही मेरा यह किताब पूरा हो जाएगा मैं संन्यास ले लूंगा इस संसार से। अंतिम रात्रि थी, रात के 12 बज गए थे। सुबह भोर होते ही वो संन्यास लेने वाले थे हमेशा के लिए। दिया बुझने लगा तो उनकी पत्नी ने दिया ठीक किया तो पहली बार देखा किसी स्त्री का हाथ जिसमें चूड़ियां हैं। उसने कहा कि तुम कौन हो हे देवी? वाचस्पति ने पूछा तो उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी। वो कहता है पत्नी? वो कहता है हाँ, आपसे मेरी शादी हो गई है, 12 साल हो गए। वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं, 12 साल तुम यहां हो। परंतु वो पत्नी भी ऐसी थी, कभी उसने कुछ उनको जताया नहीं कि मैं वहां हूं। उसने कहा ये मेरे से कैसा अनर्थ हो गया, तुम 12 साल यहां रही और मुझे पता तक नहीं कि तुम यहां रही, और आज पता चला, और कल सुबह तो मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा, हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। वो कहती है कम से कम आपने जाना तो सही कि मैं हूं, इतना मेरे लिए काफी। मैं ये नहीं चाहती कि आपके साथ रहूं या आपकी साधना में, आपके संन्यास में बाधा बनूं। आपने कम से कम इतना तो जान लिया जाने से पहले कि मैं हूं। सुबह होती है और वाचस्पति निकल जाते हैं हमेशा के संन्यास में। जो किताब उन्होंने लिखी थी उस किताब का उन्होंने नाम बाद में दिया था भामती। भामती का उस किताब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो किताब उन्होंने लिखी वो वेदांत शास्त्र पर टिका। उस वेदांत का भामसी से कोई संबंध नहीं। भामती वास्तव में उनकी पत्नी का नाम था, उसकी याद में वो भामती लिखा हुआ है। वेदांत भामती स्कूल ऑफ वेदांत एक नई विचारधारा है वो वेदांत की, जो शंकराचार्य अद्वैत वेदांत है। और ये हम थी, ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? वो जो भामती थी उनकी पत्नी एक संपूर्ण त्याग का और समर्पण का प्रतीक थी। भारतीय नारियों में ये एक नाम समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। सारा जीवन सेवा की पति, परंतु कभी ये नहीं सोचा कि वो मुझे जाने, वो मुझे देखे, वो मुझे पहचाने, वो मुझे पत्नी होने का अधिकार दे। नहीं, अंत में भी वही कहा कि आपने बस मुझे एक बार देख लिया, जान लिया, उतना मेरे लिए काफी है, अब आप जा सकते हैं। लोग तो उस विद्यावाचस्पति को भी भूल गए, परंतु भामती को नहीं भूले। समर्पण प्रथा, स्वयं को मिटा देना, समर्पण अर्थात कुर्बान जाना, समर्पण अर्थात बलिहार जाना, समर्पण अर्थात सरेंडर, समर्पण अर्थात स्वयं के जीवन को यज्ञ की वेदी पर स्वाहा कर देना, समर्पण अर्थात न्योछावर, समर्पण अर्थात कुर्बानी, समर्पण अर्थात हिंदी में बहुत ऊंचा शब्द है उत्सर्ग, उत्सर्ग अर्थात सर्वस्व स्वाहा कर देना, तन मन धन सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं। यज्ञ की वेदी पर सब कुछ अर्पण कर देना, ऐसी समर्पिता है, ऐसी अर्पिता है और ऐसी निवेदिता है अर्थात ब्रह्मा कुमारी। स्वामी विवेकानंद ने कभी अपने भाषण में कहा है, भविष्यवाणी की 2002 में उनकी मृत्यु हो गई, कहा है एक जगह, A day will come when Indian lady clad in white shall spread the message of God the world over. एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी, भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी। ऐसा समय आएगा, और वो सत्कौन है, सभी ब्रह्मा कुमारी सफेद साड़ी पहनी हो, साकार महावाक्य है बाबा के, सफेद साड़ी पहनी हो, जटाएं खुली हो, हाथ में मुरली हो और तुम हो राज ऋषि। ये समर्पण की परिभाषा है। इस प्रभु के चरणों में अर्पित जीवन क्या क्या हो सकता है, कौन सी परीक्षाएं आ सकती है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। ये अग्निपथ है, धधकती हुई अग्नि पर चलने का मार्ग है, काटे काटे आग ही आग। ऐसी कुछ अग्नि परीक्षा है जिसके जिसमें हरेक को गुजरना है, उसकी कुछ हुई चर्चा हम करेंगे, और जो चर्चा यहां होगी वो इन्हीं चार दीवारों में रहनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी गुह्य बातें हम चर्चा करेंगे, कुछ कुछ बातें अशोभनीय भी होगी, कुछ कुछ बातें हृदय को आघात करेंगी, कुछ कुछ बातों से दर्द होगा, पीड़ा होगी, परंतु वो बातें ऐसी होगी कि लगेगा कि हृदय की गांठें खुल रही। तो इस जीवन में कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, कैसे इस अग्निपथ से गुजरना है, कैसी और कौन कौन सी अग्नि परीक्षाएं देनी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसी 12 परीक्षाएं, सबसे पहली लौकिक से परीक्षा। सबसे पहली परीक्षा कहां से? लौकिक से। लौकिक मां बाप, भाई बहन और घर, मित्र संबंध, उस घर को छोड़ दिया इस घर में आ गए, परंतु यदि हमारे मन में अब भी मोह है, एक जो बातें हम कहने वाले हैं बहुत कड़वी बातें हैं कुछ कुछ। एक सेंटर पर हम गए थे, वहां के इंचार्ज बहन जी कह रहे थे इन बहनों को जरा इनसे बात करो, कभी भी थोड़ी सी बात होती है तो कहती है हम जा रही है घर, बात बात में धमकी देती है, थोड़ा सा कुछ बोल दिया 3 दिन नाराज दुखी रूठ जाना। अंग्रेजी में 3 शब्द है, तब अपनी डायरी में नोट करके रखो, कट द ब्रिजेस, अर्थात पुल को काट दो, ड्राउन द बोट अर्थात नाव को डुबो दो, थ्रो द लैडर अर्थात सीढ़ी को फेंक दो, कट द ब्रिजेस अर्थात आर्मी में एक नियम होता है, सेना यहां तक पहुंची बीच में खाई है, एक पुल डालते हैं और इस ओर आते हैं, उस ओर आने के बाद में पुल को काट देते हैं ताकि वापस भाग के जाने का कोई मार्ग ना बचे, डरने का मार्ग ना हो, उस संसार को छोड़कर इस संसार में आए हो और अभी भी पुल बांध के रखा है उसको काट दे, अब वो मार्ग हमारे लिए बंद हो गया, अब उस दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, जिस नाव में उस किनारे से इस किनारे आए हो अब इस किनारे पहुंचने पर नाव को डुबो दो ताकि वापस संकल्प ना आए कि उस दुनिया में वापस जाए, उस घर में वापस जाए, वो घर को छोड़ दिया है अब उस घर से कोई लेना देना नहीं। द्विज कहा है शास्त्रों में, द्विज अर्थात नवजन, दूसरा जन्म, न्यू बॉर्न, न्यू बर्थ, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा नवजन्म है। तीसरा थ्रो द लैडर, लैडर अर्थात सीढ़ी, जिस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आए हो ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को फेंक दो ताकि वापस नीचे आने का कोई मार्ग ना बचे। दादिया एक बार आ गई और आ गई, वापस कभी नहीं गई, यहां आने के बाद भी उधर के चावल और उधर की दाल रोटी अब भी अगर खींचती है उस घर की, तो वही दाल और वही रोटी एक दिन वहीं पहुंचा देंगी जहां से निकले थे। ये यज्ञ कुंड में आए हैं स्वाहा होने, अब उसका कोई लेना देना? कट द ब्रिजेस, थ्रो द लैडर, ग्राउंड द बोट। उधर से पेपर आएंगे, कोई बीमार पड़ेगा तो इधर हलचल, किसी का कुछ होगा इधर हलचल, सेवा उनकी करनी है परंतु उसमें लगाव ना हो, उनमें आसक्ति ना हो, इतनी उसमें आसक्ति ना हो कि वो यहां से हमारा मन ही ना लगे इधर की सेवा। जगदीश भाई जब पहली बार आए थे मधुबन में तो पहचान ही नहीं पाए कौन क्या है, कौन माँ है, कौन बेटी है, कौन भाई है, कौन पिता है, इतनी अलौकिक भाषा थी सब दादियों की, गुलजार दादी कौन है और उनकी माँ है वो भी उनको दादी कह रही है, वो भी उनको कुछ और कह रहा है, मम्मा को सब मम्मा कह रहे हैं। कई सारी बहनें हमने देखी है अपनी लौकिक माँ को मम्मी ये सब नहीं कहती, ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, जो नाम होगा उसके आगे माता जी या जो सरनेम होगा उसके आगे माता जी, ये पता ही नहीं चलता है कि उसकी माँ है लौकिक, ये पता ही नहीं चलता कितनी सेंटरों पर उनके माँ बाप आते हैं, पिता आते हैं, बैठते हैं क्लास में और निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता वर्षों तक, स्टूडेंट्स को भी पता नहीं कि ये उस बहन के पिता है। ऐसी नष्ट मोहस्थिति। परंतु पेपर वहां से भी आएंगे, मोह का पेपर, बीमारी का पेपर। उधर बीमार कोई, छोटी बहन बीमार, इधर हलचल। उधर किसी को कुछ हुआ, इधर हलचल। सेवा हम करें जो उनको चाहिए वो दे, परंतु हम डिस्टर्ब यदि हो रहे हैं, अर्थात एक गहरा लगाव जबरदस्त, और ये जीवन संपूर्ण लगाव से मुक्त होने का जीवन है। छोटी सी, छोटा सा लगाव बड़ा रूप धारण कर सकता है। एक बहन का उदाहरण, लौकिक गरीब था, सेंटर के पैसे बीच बीच में उधर भेजना उसने चालू किया, और एक दिन सत्य सामने आ गया। जो स्टूडेंट भंडारी में डाल रहे वहां से निकाल निकाल कर घर, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अमानत में खयानत। पैसा किसका है? एक एक पैसा जो आ रहा है, एक एक रुपया अठाने, वो कहां कोई माता होगी और कितना वो खर्च कर रही होगी, कितनी मेहनत से उसमें डाल रही है, वो हमारा है ही नहीं पहले। इसके लिए अपने सुखों के लिए और भोगों के लिए भी हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते, और ना ही अपने लौकिक के लिए, वो तो बहुत दूर की बात है। वो ईश्वरीय सेवा का धन है, केवल और केवल ईश्वरीय सेवा के लिए। मेरा है ही नहीं, जैसे बैंक में मैनेजर होता है, करोड़ों आते हैं और करोड़ों जाते हैं, वो सोचता है आज मेरे करोड़ आ गए, खुश होता है, उसको अपनी तनख्वाह सैलरी मिलती है टाइम पर। हाँ, करोड़ों आएंगे हाथों में और करोड़ों जाएंगे, परंतु ये कभी नहीं सोचना ये मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात समर्पण। पर पेपर तो फिर भी आएगा, मोह का, लौकिक से बीमारियों का, या आर्थिक लौकिक से। कुछ हद तक हम सेवा करें बस, अब उनका कर्म है, उनके भोग है। वो ज्ञान में है तो बहुत अच्छा, अगर ज्ञान में है ही नहीं और हम उसमें अगर फंस गए तो ये जीवन नष्ट हो रहा है हमारा, जो दिव्य और श्रेष्ठ जीवन। तो पहला पेपर है लौकिक, उससे पास होना अर्थात नष्टो मोहा स्थिति। बाइबल में वर्णन है, सुबह भी कुमारों की क्लास में सुनाया था, जीसस क्राइस्ट कहता है, He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। जो अपने लौकिक भाई और बहन को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, आउट। जो बार 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 घर जाता है, दिखाया है विवेकानंद के जीवन में, उनके आश्रम में एक भाई था जो हर मास में अपनी मां को मिलने जाता। उन्होंने कहा है, मुझे ऐसे संदिग्ध व्यक्तित्व नहीं चाहिए जो आधे सन्यासी और आधे गृहस्थी, आउट, यहां से निकल जाओ। होना है तो इधर रहो, नहीं तो उधर जाओ। ये पहला पेपर। दूसरा पेपर, साथियों से पेपर, सेवा केंद्र में रहने वाले जो साथी बहने उनसे पेपर, उनसे क्या पेपर आ सकता है? आप सभी रहते हैं, आपको पता है क्या आ सकता है? संस्कारों का टकराव, और एक को लाइट चालू चाहिए, एक को बंद चाहिए, एक को खिड़की चालू चाहिए, एक को बंद चाहिए, और ईर्ष्या, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, किसी को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, किसी को कम अवसर मिल रहे हैं, कोई अभी अभी आया और आगे जा रहा है और हम इतने समय से और पीछे, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये अधिक बुद्धिमान है, अधिक पढ़ा हुआ है, हम कम, और साथियों से पेपर, मान सम्मान की कामना, और इसको ज्यादा मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, और पेपर जो हमें डिस्टर्ब कर दे, पेपर जो ऐसे पेपर कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, एक तो वो रहेगा या हम रहेंगे, क्या 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 करते हैं, कंपैरिजन, तुलना करना, तुलना करना, और क्या लगाओ, हाँ ये एक दूसरा पेपर लगाओ। हमने मधुबन में एक दृश्य देखा, दो बहनें बैठी है डाइनिंग में, वो चम्मच से उसको खिला रही है और वो उसको खिला रही है, ये चालू है, कितना प्यार और आकर्षण दोनों का, वो चम्मच से उसको खिला रही है, वो उसको खिला रही है, सारे मधुबन निवासी देख रहे हैं, ये प्रेम है या मोह है, क्या है, एक मिनट भी उसके सिवा नहीं रह सकते, वो चाहिए जहां हम जाए सेवा के लिए, वो कन्या भी हो सकती है, लगाओ। अच्छा, दो दादी जानकी के पास एक बार विदेश की बहनें आई और सारी बहनें बैठी और कहा कि ये बहन जो है सेंटर की, उसका वो बहन से झगड़ा बहुत हो रहा है, क्या किया जाए, कुछ सब कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक दोनों नहीं हो रहा है। दादी ने कहा कि ठीक है, झगड़ा चलेगा, लगाव नहीं होना चाहिए, झगड़ा अलाउड है, चलेगा, उसको ठीक करो, पर लगाव अगर हो जाए वो ठीक नहीं करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगाव में बेचैनी बहुत है, लगाव में आसक्ति में इतनी बेचैनी है, और वो लगाव यदि सेंटर पर रहने वाले भाई से हो जाए तो बेचैनी शिखर पर पहुंचती है, यदि यहां दोस्ती हो जाए तो बहुत कुछ होता है। दोष न स्त्री का है और न पुरुष का, उम्र का है। शरीर में बहुत कुछ है, आकर्षण पैदा करने जो खींचेगा, इसके लिए वो उस तरफ और हम इस तरफ, साथियों में लगाव, और दूसरी बहुत सारी हमने निगेटिव जो बातें देखी वो सारी, इसलिए ये पेपर हर एक को आना है। प्रतिकूल परिस्थिति है, एडवर्स सिचुएशन में संपूर्ण बनना है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, कमल कहां खिलता है, कीचड़, सबके बीच में रहते हुए संपन्न बनना है। एक जैन मास्टर के पास एक शिष्य रहता था, वो शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहने लगा, इस आश्रम में बाकी जो विद्यार्थी है बिल्कुल मुझे साधना नहीं करने देते, मैं क्या करूं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे, जब ध्यान में बैठता हूं कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। वो गुरु उस शिष्य को एक झरने के पास ले जाते हैं, वो झरना नीचे बह रहा है, बीच में एक पत्थर है और कहते हैं देखो उस पत्थर को, वो जो पानी है बहता हुआ उस पत्थर से टकराता नहीं है, कभी इधर से निकल जाता है, कभी यहां से निकल जाता है, कभी ऊपर से निकल जाता है, अगर वो उससे टकरा है, अगर उससे झगड़ा करे तो शायद जा नहीं पाएगा, हमें क्या करना है, अपना मार्ग निकाल लेना है। इसलिए बाबा के महावाक्य है, तुम्हारे आसपास जो पत्ते हैं उनको जान लो, अर्थात उनके स्वभाव को, उनके संस्कार को। कोई एक बहन है, उसको अगर एक शब्द बोल दो तो वो नाराज हो जाती है, सेंसिटिव, इंग्लिश में कहते हैं HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, थोड़ा सा भी कुछ कह दो, 3 दिन नरक। अब ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है बहुत बड़ी साधना है, उसको कुछ कह भी नहीं सकते। उसको अगर कह दिया तुमने ये गलत कर दिया तो हो गया सारा गुस्सा हम पर, जबकि हमने सिखाने के भाव से भी कहा था। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी में एक गुण जो होना होता है, ये जो सेंसिटिव नेचर है, बात बात में रूठना रूसना नाराज होना परेशान ये होना, उससे थोड़ा बाहर चिकना घड़ा जैसा बनना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो कोई भी आके कुछ कह देगा और नारस। हमने रंगोली निकाली, कोई आके कहा ये भी कोई रंगोली है? मधुबन में कभी किसी ने रात भर बैठकर रंगोली निकाली, सुबह कोई आया और कहा ये कोई रंगोली है, फालतू निकाली। बहन नाराज, उदास, दुखी, सोचने लगी क्यों निकाली, निकालना ही नहीं चाहिए था उससे अच्छा। माता 3 मास मधुबन में रही, जाते समय किसी भाई ने कह दिया अच्छा जा रही हो, खाया पिया और चल दिए, उदास। टॉन्ट्स कॉमेंट्स व्यंगबान, एक चित्र किसी ने भेजा था बहुत सुंदर, एक हिरन है ऐसा खड़ा, एक तीर लगा है और नीचे घायल होके गिर गया, वही हिरन अब बूढ़ा हो गया है। दूसरा चित्र, बहुत सारे तीर लगे हुए परंतु फिर भी खड़ा है। यह है आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इतने घाव इतने बाण लगे हैं फिर भी खड़े रहना। इसलिए जहां हम रहते हैं उन आसपास की सभी आत्माओं के स्वभाव संस्कार हमें पता चाहिए। हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, किसी से भी नहीं। हर एक यूनिक है, हर एक अपने आप में अनूठा है, हमारा कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो सकता। जिसके लिए जिन बहनों के साथ हम रहते हैं उनके बीच में और हमारे बीच में तो स्नेह हो और न्यारापन हो, किसी की प्राइवेसी में इतना इंटरफियर नहीं कर लेना है। हर एक का अपना जीवन है, उसमें इंटरफियर नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना, वो जो है ठीक है बाबा को पता है। और पेपर तो साथियों से ही आएंगे, तो दूसरा बताया साथी, तीसरा छोटों से पेपर, छोटों से क्या पेपर आएंगे? सेंटर पर कन्या कोई रहती है उससे क्या पेपर आ सकते हैं? या अभी अभी कोई आया है नया उससे क्या पेपर आएंगे? क्या करते हैं? कितना भी बार समझाओ फिर भी गड़बड़ करते, 10 बार समझा दिया ये ऐसी की जाती है, ये बात ये सेवा ऐसी करनी चाहिए, फिर भी गड़बड़। कुछ भोजन की चीज बनाना सिखा दिया फिर भी गड़बड़। सूरज भाई का उदाहरण देते हैं हमेशा कि बहुत पहले मधुबन में एक नया भाई आया सेवाधारी, अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या बनाना कैसे बनाना, फिर भी उसको किचन में थे तो उसको ट्रेन किया, खिचड़ी बनाना उसको सिखाया। एक बार गेस्ट आ रहे थे और टाइम पे उसने सब उल्टा कर दिया। अब उनके पास में उन्होंने कहा 2 ऑप्शन, एक तो इसको डांटो कि तुमने सब गड़बड़ कर दिया, सब खराब कर दिया, अब उनको क्या दे, या तो चुप रहो। उन्होंने कहा था कि हर एक की अपनी बुद्धि है, आप ये नहीं समझो कि जैसे आपने फटाफट सीख लिया सब कुछ ये सब भी वैसे ही सीख जाएंगे तुरंत, जैसे आप में उमंग उत्साह था ये करूं वो करूं वैसे इनमें भी रहेगा, इनको बहुत सारी चीजें करनी है, आधा समय मोबाइल पर है। जो उमंगे हमारी थी, जो तपस्या हमारी थी, जो हमारा त्याग था, वो इन नए नए लोगों में नहीं है, और इनकी बुद्धि भी तो इतनी ही है, उतनी ही उसकी बुद्धि है, उसी बुद्धि के अनुसार ही उसे सेवा देनी है। आप अगर किसी को बहुत सेवा दे दो और जिसमें बुद्धि का काम है तो उदास होना पड़ेगा, नाराज होना पड़ेगा, रूठना पड़ेगा, सेवा बिगड़ जाएगी। इसके लिए उनके भी स्वभाव को परख लेना, कौन कन्या कितना सेवा और क्या सेवा कर सकती है, एक तो ये माया परीक्षा उनके द्वारा, और क्या सेवा और क्या परीक्षा आ सकती है छोटों के द्वारा। तुलना, कोई आके अगर आगे जा रहा है तो भी लगता है तुलना करते हैं, और एक हम उसे बहुत छोटा समझते हैं। पर क्या आपको पता है जो कन्या आई है पूर्व जन्म में कितनी बड़ी योगी होगी, कोई बहुत बड़ी राजऋषि होगी, कितने जन्म तक साधना और भक्ति की होगी, और अभी आई है, कितनी उसमें महानता छिपी है जो हमको पता नहीं। इसके लिए जो भी आया छोटा उसको यही समझो ये बहुत महान तपस्वी यहां आई है, उसको नीचा नहीं समझना, छोटा नहीं समझना, कम नहीं समझना, उसके प्रति घृणा भाव नहीं रखना, हेट्रेट, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति हेट्रेट, यह ऐसी है, उसका वो स्वभाव है, यह ऐसा बोलती है, छोटों से भी कई सारे पेपर आ सकते। चौथा, बड़ों से पेपर, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में है, पूरा यज्ञ जो है, गीता पाठशाला सेंटर, बड़ा सेंटर, रिट्रीट सेंटर, मधुबन, मधुबन में हजारों डिपार्टमेंट्स, इतने सारे असंख्य डिपार्टमेंट, उसमें अलग अलग कैटेगरी, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, ये सारा बना हुआ है, हर एक के ऊपर कोई ना कोई तो एक पूरी अव्यक्त वाणी इसके ऊपर है। गुलजार दादी कभी एक जगह गए थी और दादी के पास छोटी बहुत सारी बहनें आई और अपनी बड़ी बहन की इतनी कंप्लेंट्स की, इतनी कंप्लेंट्स की, दादी ने क्या उत्तर दिया होगा? दादी ने कहा था, तुम उनकी मां बनकर पालना करो, ये दादी का उत्तर था। एक तो ये, दूसरा एक अव्यक्त वाणी इसके ऊपर है जिसमें बाबा ने कहा था, तुम सोचते हो कि हमें ये जो कह रहा है, हमसे जो बड़ा है, ये गलत, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी हो रही है। बाबा ने अव्यक्त वाणी में पूछा था, पर ये तो सोचो उसको निमित्त किसने बनाया? अच्छा, उसको निमित्त किसी और ने बनाया, उसके ऊपर जो, उसको निमित्त किसने बनाया? जो उस आत्मा के द्वारा आ रहा है उसको ये समझो कि भगवान के द्वारा आ रहा है, जो उसके द्वारा डायरेक्शन आ रहे हैं वो उसके द्वारा नहीं है, बाप स्वयं डायरेक्शन दे रहा है, बहुत कड़ी मुरली है। इसी सब बातों की उसमें चर्चा है। तो क्या बाप से भी ज्यादा अकल तुम में? ऐसा बाबा ने प्रश्न पूछा है उससे, क्या बाप से भी ज्यादा अकल तुम में है? क्या बाप से भी ज्यादा तुमको पता है तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यज्ञ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तुम ज्यादा बुद्धिमान हो बाप से, और बाप जो डायरेक्शन देगा उसी निमित्त आत्मा के द्वारा देगा। एक ऐसे ही इंचार्ज जिसके बारे में बहुतों को कंप्लेंट थी, अव्यक्त बाप दादा से स्टेज पर मिले, सब लोग देख रहे थे, बाबा आप क्या कहेंगे इसको, ना तो ज्ञान है, ना योग है, ना कुछ है, सब लोग देख रहे थे, बाबा इसको क्या कहते, बाबा ने उसको क्या कहा पता है? बच्चे तुम जो कर रहे हो ना वही राइट है, बाबा ने ये कह दिया। और बाबा जानता है कितना गुहे राज होगा, जो कुछ भी हो रहा है बहुत सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं और बहुत सारे डायरेक्शन जो आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपना पता नहीं है, तो बाबा किसी को तो निमित्त बनाएगा, वो जो निमित्त है शायद उसको भी नहीं पता कि ये भगवान करा रहा है, ज्ञान है, परंतु बाबा ऐसी विधि से कराएगा कि उसके द्वारा वो कभी कभी न चाहते हुए भी वो डायरेक्शन दिए जाएंगे। तो ये जो पेपर है इसको पेपर नहीं वरदान समझना, बाबा के डायरेक्शन समझना है, किसी व्यक्ति का नहीं। ये एक पेपर। अगला पेपर है स्टूडेंट्स के द्वारा पेपर। स्टूडेंट से क्या पेपर आएगा? पीछे की मैंने बताया, स्टूडेंट से क्या पेपर आ सकते, पीछे से क्या क्या आ सकता, सबको आए हैं, पास किया है, पता है, बताओ। जैसे कि जी जबरदस्ती करेंगे या दबाव डालेंगे माइंड चेंज करने के लिए, एक और विरोध, विरोध जिन माताओं को हमने ही ज्ञान दिलाया, जिन माताओं को हमने ही कोर्स कराया, जिन माताओं को हमने ही एंट्री दी किचन में, जिन माताओं को हमने ही मधुबन लेके गए और बाबा से मिलाए, कभी कभी वो भी बुद्धि पलट जाए तो धोखा दे सकती है, वही जाकर हमारी कंप्लेंट कर दे। स्टूडेंट्स, इसलिए हम यदि यहां तो स्टूडेंट्स और हमारे बीच में उनकी पालना करनी है, उनको सब कुछ ज्ञान योग से सब कुछ करना है, परंतु उनके और हमारे बीच में एक अंतर, और वो उस अंतर को जाने, भूल ना जाए इस अंतर, उनको पता हो कि हम कौन हैं, किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि आकर हाथ पकड़ ले। एक बहन का फोन आया, एक भाई परेशान कर रहा, सीनियर है क्या करे, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी को इतनी हिम्मत हुई कैसे, किसी की जरूर हमने ही थोड़ी तो सहमति जताई होगी, थोड़ा तो हमारे तरफ से कुछ हुआ होगा, तो ही तो इतनी हिम्मत बढ़ी उसकी। चाहे माताएं हो चाहे भाई, मुख्य रूप से भाई और उसमें भी कुमार, सेवाएं उनसे करो, सेवा उनके साथ करो, परंतु हमने और उनके पास एक डिस्टेंस हो, वो जो फैमिलियरिटी है दोस्ती ना हो जाए। फिर वो फोन, फिर वो व्हाट्सएप, फिर वो सारा मैसेजेस, वो सारा बिजनेस चालू हो जाए, प्राइवेट टॉक्स, सीक्रेट, सब कुछ। तो स्टूडेंट से भी पेपर आएंगे, विरोध होगा, ग्लानी करेंगे, कुछ भी कर सकते। इसके लिए अलग पालना करनी है, प्यार करना है, सब कुछ करना है, पर तुम उधर और हम इधर, इतनी उनकी साहस ना बढ़े कि वो हमारे जीवन और व्यक्तिगत जीवन के ऊपर एक टिप्पणी करने लगे। इस पेपर को भी पास करना है। अगला पेपर है बाहर वालों से पेपर। कौन कौन से बाहर वाले, जो ज्ञान में नहीं है, वो उनसे क्या हो सकता है, कोई पेपर उनसे भी आ सकता है, कौन सा ग्लानी कर सकते हैं, और पीछे से क्या पेपर आ सकता है, पुलिस केस, सेंटर पर पुलिस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ हो जाए, बाहर के लोग आ जाए, एंटी हो जाए, झगड़ा करने आ जाए, विरोध करने आ जाए, कौन क्या करेगा हम बता नहीं सकते। संसार के लोगों की वृत्तियां, संस्कार तमोप्रधान, कब अच्छा बात करने वाला परिवर्तन हो जाए और उसकी दृष्टि दैहिक हो जाए, घर में बैठकर टीवी और इंटरनेट में क्या देखते हैं किसको पता, क्या ये गारंटी के साथ कोई कह सकता है कि ये भाई है इसकी दृष्टि बहुत अच्छी है। महाभारत में वर्णन है युधिष्ठिर धर्मराज, उसकी मां बैठी है, धर्मराज से पूछा गया जब तुम्हारी मां बैठती है तो क्या तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति निर्विकारी है, वो कहता है आई एम नॉट श्योर, श्योर नहीं मां के लिए। कौन कह रहा है, अर्जुन नहीं, भीम नहीं, धर्मराज। इसके लिए बाहर वालों के साथ भी प्रेम पूर्वक बिठाया, प्रेम पूर्वक टोली दी और विदा कर दी। उनको भी परखना है किसको कितना अंदर आने देना है। इतना अंदर ना आ जाए कि फिर बाहर ढकेलना मुश्किल हो जाए। और एक दूसरी चीज, एक जगह पर कहीं रिट्रीट सेंटर बन रहा है, एक भाई है जो सारा खर्चा करता है, ज्ञान में नहीं है, सहयोगी है, परंतु उसका स्वभाव ऐसा है कि सबको डांटता है और कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, धमकिया देता है, पर क्या कहेंगे उसे, क्योंकि सहयोग उससे मिल रहा है। जगदीश भाई ने कहा है कि सेंटर ऐसा हो जिसकी कोई भी दीवार किसी भी भिखारी के दीवार से स्पर्श ना हो और उस सेंटर में कोई भी एक पैसा भी भिखारी का पैसा ना लगे, झोपड़ा ही रह जाए तो ठीक है, नहीं चाहिए बड़ा सेंटर, नहीं बनाना है कुछ। यदि कोई ऐसी आत्मा उसमें सहयोग दे रही है जो कि पवित्र पैसा नहीं है, पवित्र धन नहीं है, समर्पण भाव जहां नहीं है, चलेगा नहीं बना, भीख भी नहीं मांगनी है किसी से भी, किसी से भी नहीं, और पैसों की तो बिल्कुल नहीं, पैसे आकर गिरने पड़ेंगे, गिरेंगे। और जहां हमने देखा पवित्रता बहुत अच्छी है सेंटरों पर, वहां पर किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, सदैव सब आ जाते। नहीं तो कुछ कुछ ऐसे भी सेंटर है, हमारे एक बहन बता रही थी कि वो जिस सेंटर पर जाती है वो बहन पीछे पड़ी है, उसको मोबाइल चाहिए, मोबाइल है परंतु अच्छा वाला चाहिए, रोज रोज उसके पीछे पड़ी हुई, क्या कहें, क्या भगवान ने ये सिखाया? इसके लिए बाहर वाले जो भी है प्रेम से, आदर से, सत्कार से, परंतु न्याय, डिटैचमेंट, वो अलग हमारा। कितने हुए पेपर? सातवां मधुबन से पेपर। मधुबन से सबसे बड़ा पेपर कौन सा है बहनों के लिए? जाते ही एकोमोडेशन, जाते ही एकोमोडेशन, चार लोगों का बोला था, दस लोगों को लेके गए। दूसरा मधुबन में पेपर सब लेके जाती है ना पार्टियां, क्या क्या होता है उसमें, वहां जाते ही कोई माता बीमार पड़ जाए, ठीक है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, वो सीरियस हो जाए, घर वालों को फोन करो, घर वाले पहले ही मान नहीं रहते, पहले ही विरोधी है, अब उसको फोन करो कि आके देखो, डॉक्टर ने बोला है सीरियस है, कितनी मुश्किल काम है। और एक दूसरी बात, कोई माता ट्रेन में गुम हो जाए तो उधर साइड सीन में कहीं रह गई तो, और मधुबन में पेपर कौन कौन सी क्या, हाँ हाँ, उस समय क्या होता है, सीट के लिए झगड़ा, सीट के लिए झगड़ा, और किसी की कोई चीजें गुम हो जाए, वस्तु गुम हो जाए, वहां जाकर झगड़ा हो जाए किसी से, कुछ भी होता है, ये सब चीजों के लिए स्मार्ट बनना है। कोई चीज चोरी हो जाए, बहुत कीमती महत्वपूर्ण, पुलिस हॉस्पिटल और ये सारी चीजें उसमें आ जाए, वहां पर स्मार्टनेस चाहिए। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाए कोई माता, तो हम देखते हैं कुछ कुछ बहनें होती हैं उनको कुछ समझ भी नहीं आता है करना क्या है, भटकती रहती है इधर उधर उधर उधर, और कुछ कुछ बहनें इतनी होशियार होती है, जाएगी डॉक्टर से मिलेगी, पूछेगी कितना समय रहना है, क्या करना है, उसके रिलेटिव्स को बुलाना है क्या, इन्फॉर्म करना है क्या, और कहीं भेजना है क्या, स्मार्टनेस, सब पता है, जैसे सिचुएशन पूरे कंट्रोल में है उसके, उसको पता है बराबर, फटाफट कॉल करेगी, एक को वहां रखेगी उसकी सेवा में, और वो सारा बाकी का चालू रहेगा, और कोई कोई एकदम घबरा जाती है, क्या करना है पता ही नहीं, डर। एक बहन आई थी, माता जी बीच में ट्रेन में गुम हो गई। वो माता के घर वालों ने पहले ही कहा था मत लेके जाना इसे, पहले ही ब्रह्मा कुमारी के विरोधी। उस माता को लेके गए, एक स्टेशन पे कहीं उतर गई, रह गई, उसके पास पैसे भी नहीं, ट्रेन आगे बढ़ गई, क्या करेंगे। ये सब सिचुएशन से मधुबन में भी बहुत सारे पेपर आए। उसके लिए स्वयं को स्वयं के अनुभव से और दूसरों के अनुभव से परिपक्व बनाना है, ताकि कोई भी इमरजेंसी वहां आ जाए, हम ही बीमार पड़ जाए। हम सब पार्टी को लेके गए, एक बहन 60 की पार्टी, और हम ही बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और तो उनको कौन संभालेगा और कैसे संभालना, कैसे किसको काम देना, कैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना काम को। स्मार्ट वर्क चाहिए, ऐसा बुद्धू बनकर नहीं चलेगा, और नहीं अगर आता है तो सब सीख लेना है कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को, इमरजेंसीज को, क्योंकि सिचुएशन निमंत्रण देकर नहीं आती, अचानक आती, इमीडिएट सिचुएशन अचानक। जितनी सिचुएशंस आए उन सबको सीखना। और एक मधुबन में पेपर, वहां जाकर वहां के लोगों के, मधुबन निवासियों के अवगुण देखना, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, यहां ये हो रहा है, वहां तुम वहां किस लिए गए, वो देखने के लिए या तपस्या करने के लिए, बाबा से मिलने के लिए गए या ये सब करने गए, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, बाबा का कमरा है उसमें तपस्या करो, पार्टी को देखो और तपस्या करो, बस। वहां के मैटर्स में, वहां की बातों में, वहां के डिपार्टमेंट और वहां के भाइयों में इन्वॉल्व होना और उनके साथ घूमना, नाम कुछ भी दो ऊपर से सेवा का, सब व्यर्थ है। घंटों घंटों तक किसी के साथ बैठकर बातें करते रहे, सारी दुनिया देख रही है, क्या ये तपस्या है, ना तो उनके अवगुण हमको देखना है, ना तो वहां की कोई चीजों में हमको इन्वॉल्व होना है, हम जिस लक्ष्य से गए उसी लक्ष्य को करके वापस आना है। ये एक पेपर। अगला पेपर आर्थिक पेपर, आर्थिक अर्थात धन की कमी, क्या करेंगे, धन की कमी हो जाए तो मामी। एक बात जो सुबह भी हमने क्लास में कही थी, कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं, एक पत्र छाप भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, 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 इतने सारे पेड़ है, कवि कहता है इतने पत्ते लगे हुए परंतु एक पत्ते की भी छाया मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मिला तो चलेगा पर मांगूंगा नहीं, भीख नहीं मांगूंगा, भगवान को देना है तो देगा परंतु भीख नहीं मांगेंगे, ना तो स्टूडेंट से, ना तो बड़ों से, ना तो मधुबन से, कुछ भी हो, फिर हो टोली हो या कुछ भी हो या सौगात हो या कुछ भी, मांगना नहीं। आर्थिक पेपर, धन की कमी होगी, सब कुछ होगा, परंतु स्वयं को निश्चय में स्थित रखना है, बाबा सब करेगा। आर्थिक पेपर। अगला पेपर और क्या हो सकता है, आप बताइए। बीमारी, शरीर की बीमारी, कोई बीमारी हो जाए, कोई अचानक बीमारी आ जाए, पेट दर्द, अपेंडिक्स जिसमें ऑपरेशन करना पड़े, गॉल ब्लैडर जिसमें स्टोन निकालना पड़े, या पथरी, या कोई भी हार्ट अटैक, अचानक, क्या उस बीमारी में भी हम स्थिर रह सकेंगे, सुबह भी उदाहरण दिया था एक भाई का, शांतिवन में था, बहुत सेवाएं की, बहुत सेवाएं की, दिन रात ट्रांसपोर्ट में, ज्ञान योग के लिए समय नहीं था, सेवा ही सेवा, सुबह से लेकर रात तक। जब बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट था, एक दो दिन सेवाधारी नहीं मिला तो कहने लगा इससे जो अच्छा होता शादी कर ली होती, कम से कम बीवी तो होती, बच्चे तो होते आज देखने के लिए। ये संकल्प आ रहे किसको? छोटी मोटी आत्मा नहीं, 40 साल समर्पण जीवन। क्या ऐसी स्थिति में भी हमने स्वयं को तैयार कर रखा है? सब होगा, सारी परिस्थिति आएगी। क्या ये शरीर है इसमें पेपर तो आएगा, व्याधि आने वाली, ऐसा कोई कह सकता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी? होगा। आंसर दादी को देखो, दादी को जिस हालत में अभी लाया था, दादी को इंटेस्टिनल परफोरेशन था एक्यूट 3 दिन पहले, जिसमें पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया जाता है, आईसीयू में जिसका ट्रीटमेंट होता है, आने का तो सवाल ही नहीं है कहीं पर, इम्पॉसिबल। पेशेंट 7 दिन आईसीयू में रहता है, 7 दिन वार्ड में रहता है, परिस्थिति देखो। किसी को तो, सभा वालों को तो पता भी नहीं चल रहा होगा वो क्या कंडीशन में है उस समय। पेट में जितना सीवियर, अभी आने से पहले तक एनबीएम था, नील बाय माउथ, 4 दिन से कुछ भी मुंह में नहीं गया था, खाली सनाई चालू थी, आने से पहले निकाली सनाई और लिक्विड्स चालू किया थोड़ा। पिछले संडे की मुरली, दादी जानकी से मुलाकात, तुम प्रकृति जीत हो, तुम चक्रवर्ती हो, बाप समान भव की वरदानी हो। याद में स्थित हो, सेवा करने वाली हो। कैसी स्थिति है बीमारी में? बीमारी में ये स्थिति रहना बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि हमने इतनी आत्माओं को अपने सामने बीमार होते हुए देखा और उस बीमारी में इतनी चिड़चिड़े हो जाती है सभी आत्माएं। एक बहन 40 साल कैंसर की बीमारी, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव, बात बात में हर एक से चिड़चिड़ापन। और जब अंतिम समय आया तो मसाला डोसा उसको खाना है, मसाला डोसा खाते खाते शरीर छोड़, सारी बुद्धि और आसक्ति उसमें रह गई। बाबा तो नाम ही नहीं था, बाबा कहीं पर बाबा नहीं था, बाबा तो पता नहीं कहां गुम हो गए। बीमारियों में वास्तविक परीक्षा होती है हमारे ज्ञान और योग। हमने इतनी सारी दादियों को देखा है, यहां लाइन दे रहे, यहां सुई लगा रहे, वहां सुई लगा रहे, कुछ नहीं। दादियां ऐसी, पालू दादी, शांतामणि दादी, मनोरिंद्रा दादी, इधर लाइन, इधर लाइन, इधर प्रिक, उधर प्रिक, इधर ट्यूब, उधर ट्यूब, यहां कुछ, वहां कुछ, कुछ नहीं, शांत बैठी। कोई जैसे देह में कोई यही नहीं, और कुछ कुछ एक लाइन ले लिया तो बस, एक सुई क्या लग गई और पता नहीं क्या हो गया। इतना सेंसिटिव नेचर, बात बात में कुछ 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 कुछ। दादी को कोई भी दवाइयां सामने दो, चुपचाप खा लेती, कभी ये नहीं पूछती है किस लिए, जो भी दे देंगे वो खा लेंगे चुपचाप, ये नहीं, ये क्या है, वो क्या है, वो तो दी थी, ये क्यों है, अभी क्यों देनी है, अब क्यों नहीं बढ़ाई, कोई संकल्प ही नहीं। बीमारी में ऐसी परिपक्व अवस्था, 80 साल का योग है, क्या हमारी ऐसी अवस्था है? क्या डगमग हो जाएंगे और गिर जाएंगे? एक भाई एडमिट था फ्रैक्चर के साथ, जैसे ही फ्रैक्चर हो गया, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी, रोज कोसते रहा, मुझे तो सेवा करनी है, बाबा ने ये क्या कर दिया, बाबा ऐसा क्यों करता है, बाबा को पता नहीं मैं इतनी सेवा करता हूं। पैर लटका कर और सबके प्रति कंप्लेंट्स। एक दूसरा ऐसा ही भाई एडमिट हुआ, फ्रैक्चर, कोई कंप्लेंट्स नहीं। तब बाबा को वो सेवा करानी थी, अब बाबा यहां बैठकर मेरे से मनसा सेवा करा। टूटने दो पैर, जुड़ेगा एक, भाव अलग अलग है दोनों आत्माओं, क्या बीमारी के लिए हम तैयार हैं, क्या उस बीमारी में हमारी ऐसी परिपक्व अवस्था रहेगी। ये एक पेपर और सबको ये आएगा और पास करना है। दादी यहां से गई, 5-6 बजे पहुंची शांतिवन और 7 बजे स्टेज पर थी सोशल मीडिया प्रोग्राम की। अव्यक्त बाबा के महावाक्य है 24 अक्टूबर 1984 शायद 87। तुम मतलब तुम दादी जानकी को कह रहे, तुम विश्व की परिक्रमा करते हो, बाप तुम्हारी परिक्रमा करते। क्या कहा है दादी को कि तुम विश्व की परिक्रमा करती हो, बाप तुम्हारी परिक्रमा करते हो। जनक नाच रही है, बाप नचा रहा है। इतनी बीमारियों में और ऐसी अचल और अड़ोल स्थिति, ऐसी तो पुस्तक चाहिए। बाहर से कितना साधारण दिखाई दे रहा है, कोई जान किसी को पता भी नहीं होगा क्या कंडीशन। क्रिटिकली इल पेशेंट जिसको कहते हैं, आईसीयू का पेशेंट, वो आया था इधर, किसी को पता भी नहीं, सभा वालों जो जिन्होंने देखा होगा। उस अवस्था को, उस बीमारी को चेहरे पर नहीं आने दिया, कैसी तपस्या चाहिए। और लास्ट में एक अंतिम पेपर प्रकृति की ओर से देखो, फिर क्लास को पूरा करते हैं। प्रकृति की ओर से प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएगी, सेंटर का नुकसान या कुछ हो जाए, वस्तुओं का सामान का नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, कोई चोट लग जाए, कुछ भी, जो भी प्राकृतिक आपदा है उनके भी पेपर आने हैं। और अभी नहीं है तो फ्यूचर में तो आएंगे जरूर। तो इतनी हमने कुछ लिस्ट गिनाई है पेपर्स की, परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि कहां ये अग्नि पथ है, सबसे गुजरना पड़ेगा। सबको पता था सीता जो है वो पवित्र है, फिर भी उसको अग्नि परीक्षा देने को कहा। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, उसके बाद यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न, कोई भी? ज्ञान योग धारणा सेवा सेंटर मधुबन, कोई भी चीजों से संबंधित प्रश्नों से पार, सभी प्रश्नों से पार है बहन जी, किसी को कोई प्रश्न नहीं, आप निश्चिंत रहो। किसी का कोई प्रश्न नहीं, कोई भी प्रश्न, कोई समस्या, जटिल समस्या, कोई भी, ये आपकी नहीं है और किसी और की, और जिसको आप मदद करना चाहते हैं।
ओम शांति। ऐसे लग रहा है जैसे भाई साहब आप सबको अपने अंतर की गहराई की मन चिंतन में व्यस्त कर दिए हैं, और जिसमें आप अपने सारे कमी कमजोरियों को निकाल के संपूर्णता की ओर जाने के लिए संकल्प कर लिए हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि जो नाव, जिस नाव पर बैठ के यहाँ है उसको भी बोल देना है, और जो ब्रिज है उसको तोड़ देना है, और जो सीढ़ी है उसको फेंक देना है। तो ये शायद अच्छी बात बताए हैं। बहुत सारे जो भी समस्याओं के बारे में भाई साहब ने बताया, सारे प्रैक्टिकल थे, बहुत अच्छे से आपने सरलता से, सूक्ष्म शब्द से और सरल संतुल से हम सबको बताया, जो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उसको ऐसे कि कभी कभी ध्यान दिया, कभी कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ क्या बताते से आज सुबह हम भाई साहब की बायोडाटा पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि भाई साहब बहुत कम समय में तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं तीव्र पुरुषार्थ से, इसमें हम तीव्र पुरुषार्थ ही बन सकते हैं। तो आपने जो अपनी सूक्ष्म शब्दों से और इतनी कम समय में बहुत कुछ धारणा की बातें बताए, इसके लिए भाई साहब आपको बहुत 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 धन्यवाद। दीदी पूछ रहे हैं आपने ऐसा कैसा क्या पुरुषार्थ किए जब तेरे पुरुषार्थ ही होते हैं।
मुरली मुरली का गहन अध्ययन, मुरली का गहन चिंतन, एकांत और मौन, लंबा समय तक प्रकृति के सानिध्य में रहकर मुरलियों का अध्ययन और हर दिन उसको अलग अलग रीति से अध्ययन करना। हम लोगों ने मधुबन में ऐसे 52 विधियां बताई है एक ही मुरली की स्टडी करने की। हम सोच रहे थे उस पर भी कोई क्लास करे पर समय नहीं। 52 मेथड्स कि कैसे मुरली का मंथन किया जाए। कुछ मेथड्स आपको बता रहे हैं, जैसे एक मेथड है कॉन्ट्रास्ट मेथड। एक मुरली से ये निकालना कि कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से, भक्ति के बारे में और ज्ञान के बारे में क्या क्या कहा हुआ, या बाबा ने अगर कुछ शब्द कहा है जैसे आज की मुरली में ज्ञान कस्तूरी, ज्ञान का तुम्हें शंख बजाना है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा है और ज्ञान की वर्षा हो रही है, ऐसे चार शब्द आते हैं चार वाक्य। एक है मुरली पढ़ना और हो गया, या दूसरों को पढ़ाना और हो गया, परंतु इस वाक्य की गहराई में जाना, ज्ञान की वर्षा अर्थात क्या, उसका वाक्य का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ गुणार्थ, एक एक शब्द एक एक वाक्य की तह तक पहुंचना और एकांत में उसका चिंतन करना। हमें लगता है ये काम हम हर दिन लंबा समय तक, पर हमारी जो दिनचर्या है हॉस्पिटल की बहुत व्यस्त है, उसमें 24 आवर्स ऑन कॉल है, जो भी इमरजेंसी जो भी पेशेंट सब देखने हैं, परंतु वो सब करते हुए भी हमको लगता है कि हम उन सब से डिटैच भी हैं उसी ज्ञान के चिंतन के आधार। एक ही मुरली को, एक होता है पढ़ना या पढ़ा देना और काम पूरा हुआ, एक होता है कई बार उसको पढ़ना, अलग अलग तरीके से उसको पढ़ना, एक कॉन्ट्रास्ट में था, एक एग्जाम्पल में था, जैसे संडे की मुरली बाबा ने उसमें कुछ उदाहरण दिए, कौन कौन से उदाहरण थे, पहला फायरफ्लाई, जैसे वो फायरफ्लाई होता है जुगनू होता है और उसको देखते ही कहते ये आ गया ये आ गया, वैसे तुमको कहेंगे कि शांति कुंड आ गया, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई प्यासा पानी का प्यासा होता है, ये उदाहरण बाबा दे रहे, ये मेथड को कहा जाता है एग्जाम्पल मेथड, ये पूरी मुरली में बाबा ने उदाहरण कौन कौन से दिए उसको वहां से निकालना, उस मुरली को अलग कर देना और इसके ऊपर चिंतन करना, प्यासे का उदाहरण। तीसरा उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे साइंस जो होता है विनाश भी करता है रचना भी करता है सब कुछ करता है, वैसे साइलेंस का भी मूल मंत्र मूल यंत्र जो है वो है शुद्ध संकल्प। ये तीन उदाहरण यहाँ दिए और उदाहरण आगे दिए, जैसे ब्रह्मा कुमारी बहने कहीं पर दुख की घटना होती है तो वहां जाती है शांति पहुंचाने, वैसे वो तुमको पुकारेंगे हे शक्ति शांति के देवता आकर शांति दो। चौथा उदाहरण, पांचवा उदाहरण, जैसे कोई बीमार होता है तो खाली डॉक्टर याद आता है, उसी तरह अशांति के एक वातावरण में केवल तुम याद आए, तो ऐसे पांच उदाहरण उस मुरली में। जो कि संसार के उदाहरण है, परंतु वो अव्यक्त वाणियों में आए हैं। जैसे 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 शब्द बोला मतलब उदाहरण। तो ये मेथड है जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल मेथड, कॉन्ट्रास्ट मेथड, ड्रिल मेथड। उस मुर्गी को पूरा के पूरा ड्रिल में बना दो। हम लोगों का पांडवभवन में ग्रुप है जो सुबह 5:15 हम लोग बैठते हैं तो 6:15 तक। उसमें अभी हम यहाँ हैं तो हर एक को, जैसे संडे की मुरली हम लोग फ्राइडे से पढ़ना चालू करते हैं, फ्राइडे को ही रिवीजन होता है। जैसे किसी को एग्जाम्पल मेथड दी, किसी को कंट्रास्ट मेथड दी, किसी को और कोई मेथड दिया, वो उसका अध्ययन कर कर पढ़ता है। तो एक जो बहन जी ने पूछा कि ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन और हर दिन में मौन का अभ्यास, एकांत का अभ्यास, ये सब बातें हैं जिन्होंने हमें बहुत मदद की। हम अलग अलग सीरीज, अभी मधुबन में हमारा फुल स्टॉप नाम का सीरीज चालू है जो स्पार्क की किताब है बाबा की। इसके पहले मनसा सेवा का पूरा हो गया, वो बेहद का वैराग पूरा हो गया। हर दिन इतना ही पैराग्राफ पढ़ते हैं बस थोड़ा सा, और उसके ऊपर फिर चिंतन, उसके ऊपर डिस्कशन, उसके ऊपर मनन। एक ही छोटा सा वाक्य ले लेना, जैसे आज की मुरली में ज्ञान कस्तूरी है, आज की मुरली में ज्ञान का शंख बजाओ, तो क्या क्या होगा? चिंतन, केवल पढ़ के छोड़ नहीं दिया उसे, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका अध्ययन, उसकी गहराई में जाना। तो मनन, चिंतन, मौन होएगा, ये हम कह सकते हैं।
देखिए भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आते रहे और समय आज बहुत कम था, ऐसा की प्लानिंग के अनुसार टीचर्स के साथ और भी जो शेयर करना चाहते थे ज्ञान की टॉपिक्स हो रहे गए हैं, इसलिए हम सब की तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप और भी एक बार आए और टीचर्स की स्पेशल एक दिन का जरूर भक्ति कराएं, जैसे आप सोचे थे तो उसका हम लाभ लेना चाहते हैं। सब चाहते हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम सोचते हैं आप ये रिक्वेस्ट जरूर रखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतने बीजू शिटल के बाद भी आज के दिन दिया, और कल सुबह भाई साहब बलांगीर के लिए रवाना होंगे सुबह 5:30 तक बलांगीर जाएंगे, वहाँ भी उनके जो भाई बहन हैं उनके लिए जनरल में भाई साहब का क्लासेस है भर्ती का, और भी परसों भाई साहब का हेल्थ है माउंट आबू के लिए। तो आज भाई साहब हम सबसे हम छुट्टी तो नहीं कहेंगे, मैं परिवार में भी क्या छुट्टी लेना, लेकिन आज शायद ही मधुबन गया सेवा में आश्रम से छुट्टी लेंगे। अच्छा अभी सबको टोली देंगे और फिर
रास्ते में हम लोग अभी जब आ रहे थे मेडिकल कॉलेज से, एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक पर 4 ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर होता है, तो हमने बहन जी से पूछा था अगर ये ट्रैक्टर जिसके 4 पहिए हैं वो अपने 2 पैरों को ऊपर कर ले और कहे कि मैं इतना भार इस ट्रक पर नहीं देना चाहता, इसके लिए मैं 2 ही पैर रखूंगा, 4 नहीं रखूंगा, इसका ज्ञान में क्या होता है। एक दूसरा उदाहरण हमने उनको दिया कि एक किसान है, गांव का गरीब व्यक्ति, सामान कोटी वगैरह लेके चल रहा है, पड़े वस्त्र है, और राजा का रथ आ गया, राजा ने कहा आ जाओ मेरे रथ पर बैठो, तो कहते नहीं 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 मैं कैसे बैठूं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, नहीं कहते आ जाओ, तो वो बैठ जाता है। और फिर वो व्यक्ति क्या करता है, अपने जो थैला जो था वो अपने हाथ में ले लेता है, राजा के रथ में बैठा है परंतु थैला, मैं राजा पर और कितना बोझ दूं, पहले ही मैं खड़ा हूं और मेरा सामान अलग से नीचे रखूं रथ पर, तो मैं इतना बोझ क्यों दूं, तो वो सामान उठा लेता है, इसका क्या अर्थ है? वास्तव में वास्तव में जो भी हमारा है सब कुछ वही कर रहा है, सब कुछ वही है। ये तो हमारी अल्प बुद्धि है जो हम सोचते हैं कि ये मैं उसको ना दूं और वो ना उसको दूं। हम है ही उस ट्रक पर, तो वो सोचता है ट्रैक्टर कि मैं दो ही पैर रखूंगा, चार नहीं, चाहे चार रखो या दो रखो, वजन तो सारा उसी पर है। वो गरीब किसान अगर ये सोचे कि मैं अपनी थैली नीचे नहीं रखूंगा, पहले ही राजा ने मुझे उपकार है मुझ पर, और उसके ऊपर मैं थैली भी नीचे रखूं और मैं भी खड़ा रहूं, वो कहते नहीं मैं थैली उठा दे रहा, तो इसको क्या कहेंगे। यहां एक समर्पण सूक्ष्म भाव है और कि जो भी हमारा है वही है। हम ये अगर सोचे कि नहीं ये मैं दे देता हूं, तुम क्या लोगे, तुम हो ही रथ पर और वो उसका रथ है, सब कुछ उसका है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चाहे विशेषता है या कुछ भी है, सब कुछ वही है। अच्छा
सिंपल रॉयल, सिंपल के साथ साथ रॉयल और महीन बुद्धि और महानता। तो खास भैया अपने सचिन भाई से यह अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी तबियत जब थोड़ा बहुत नीचे था तो उस समय दीपक भाई ने कहा आप वहां पर ही सचिन भाई के पास ही जाओ, कोई भी डॉक्टर अगर ठीक नहीं कर पाता है, सचिन भाई ने ऐसे जादू है आपकी मेडिसिन भी इतना पावरफुल और अच्छा पैसे देते हैं, तुरंत ठीक हो जाता है।